किया हुआ मन, तेज किया हुआ मन भी भगवान को नहीं पकड़ पाता। भगवान सदा मन से परे रहो, इसका अर्थ है कि बहुत दूर है, और वैसे स्थिति उनकी बहुत निकट, निकटतम है किसके, जीव के। जीव और भगवान दोनों हृदय में रहते हैं और एक ही सीट पर दोनों बैठे हैं, परंतु जीव जो है वो संसार के भोगों की तरफ चित किया है और भगवान चुपचाप इसकी हरकतों को, इसके कर्मों को देखते रहते। कभी कभी प्रश्न होता है भगवान मना क्यों नहीं करते हैं उसको कि मेरे तरफ देखो। भगवान परमात्मा के रूप में कुछ नहीं कर सकते, उदासीन है, लेकिन गीता कहते समय वे कहते हैं मन में ना भव मत भक्तो मद्यादि मान नमस्कार। इस बात को मान लेना चाहिए जीव पक्षी को। भगवान सामने बोलते हैं मेरा भक्त बनो, मुझमें मन लगाओ, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो। तो परमात्मा के रूप में भगवान हम लोगों के बिल्कुल निकट हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अति दूर, बहुत दूर। एक कवि ने बड़ा अच्छा लिखा था, कोई प्रेमी प्रेमी की बात है, चाहे प्रेमी और प्रेमिका की बात होगी, कि कोई बहुत निकट रहते थे लेकिन आपस में संबंध टूट गया, तो कोई आदान प्रदान नहीं, तो कहता हाय रे इंसान की मजबूरियां, पास रह करके भी इतनी दूरियां पास रह करके भी इतनी दूरियां। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही अपार्टमेंट में भिन्न भिन्न फ्लैट में रहने वाले लोग 20-20 वर्ष भी नहीं जान पाते हैं कि उसमें कौन आदमी रह रहा है। बॉम्बे में ऐसा होता है ना, तो बहुत अपार्टमेंट ऊंचा है और कई फ्लैट हैं, कई फ्लोर है, एक व्यक्ति अपने ऊपर वाले को भी नहीं जान पाता है कि वो क्या है, कैसा है, कहाँ का है। वो जाता है, निकलता है, लिफ्ट से अपने कभी काम करता है, कभी देखा देखी हो गया होगा, लेकिन वो कहाँ का है, क्या है, ऐसे कोई सरकार नहीं। और जब स्नेह है, ज्ञान है, परिचय है, तो आदमी दूसरे दूसरे जगह तक फोन करता है, वहां से बात करता है, मिलता है, संबंध रखता है, और नहीं तो निकटता क्या करेगी। भारत में तो फिर भी लोग एक दूसरे से परिचय कर लेते हैं, विदेश में कोई किसी से बोलता ही नहीं। हमने देखा हो कई वर्षों से लोग एक अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट अलग अलग, तो मैं पूछा कि आपके ऊपर कौन रहते हैं, तो हमको पता नहीं है कि कौन रहते हैं, कुछ न नाम का पता है, न किस देश के हैं, कहाँ के हैं, कुछ नहीं। तो देखा है आपने, तो देखा है, हमको पता नहीं है कि उसमें कौन रहता है। आदमी तो निकलते रहते हैं, लिफ्ट पर जाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं, अनिवार्य की बात, पता नहीं कौन रहा। तो भगवान तो पास में है, लेकिन एक तो ये दिव्य हैं, अलौकिक हैं, अप्राकृत, और दूसरे जीव का मुख तो अपने फ्लैट में है, वो तो अपने भोगों में, अपने प्लान में रचा पचा है। भगवान पर दृष्टि करने को उसको कोई फुर्सत ही नहीं, और भागवत सप्ताह आदि करके उसको प्रेरित कीजिए कि जरा भगवान की तरफ देखो, फिर भी मति नहीं आता, बहुत कठिन। इसीलिए पास रह करके भी इतनी दूरियां, भगवान एकदम हृदय में है लेकिन अति दूरम, बहुत दूर। यद्यपि उनके तरफ से दूरी नहीं है, दूरी हमारे तरफ से, वो तो सब जानते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, भगवान हृदय में ही सब करते हैं, लेकिन जीव है मुख फेर लिया है भगवान से, विमुख हो गया है। विमुख का अर्थ होता है विपरीत मुख, विमुख। तो भगवान में और जीव में छियासठ या 33 का संबंध हो गया, 66 छ लिखते हैं ना, तो एक छ दूसरे छह के और देख नहीं रहा, एक पहला छव देख रहा है, वो बेचारा पड़ा हुआ है पीछे उसके, लेकिन वो छव जो है वो जानता भी नहीं है कि एक छव मेरे पीछे, इसी तरह से जीव को पता नहीं है कि भगवान हम देख रहे हैं, हमारे सबसे निकटतम बंधु माता पिता मित्र स्नेही सब वही है, वो नहीं देख रहे। जबकि भगवान में और जीव में 63 का संबंध होना चाहिए, 6 का मुख भी इधर और 3 का भी मुख इधर, दोनों एक दूसरे को देखें समझें प्रेम करें। तो उस 6 को यदि लौटा उल्टा कर दिया जाए तो 3 हो जाएंगे, उन्मुख हो जाएगा, विमुख जो है वो उन्मुख भगवान को समझने लगेगा। लेकिन लगता है कि परमात्मा जो है वो हृदय में जीव के साथ 36 का संबंध बना लिया, ऐसा लगता है। वो भी रुस गए और वो भगवान की तरफ, 6 जो है भगवान की तरफ नहीं देख रहा है, तो भगवान भी 3 बन गए, ये भी दूसरे तरफ देख रहे हैं। चलो तुमको हमसे मतलब नहीं है तो मैं भी मतलब नहीं रखूंगा, लेकिन दोनों एक ही साथ हैं, यह बात है। 3 और 6 दोनों एक ही साथ रहते, अगर दोनों एक साथ ना रहे तो 36 बनेगा ही नहीं। तो जो भी हो भगवान बिल्कुल निकट हैं, पर सबसे निकट रह करके भी अति दूरम इव, बहुत दूर जैसा लग रहा है। और संसार में मनुष्यों की यह दशा है कि भगवान के विषय में कभी सोचते हैं तो शायद ही कोई आदमी होगा जो ये कहता होगा कि भगवान हमारे हृदय में है, वो ये कहता भगवान ऊपर है, ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला क्या, भीतर वाला देख रहा है, ऊपर वाला बहुत दूर है, वैकुंठ से भगवान यहाँ नहीं देखने आते, वो भीतर रहकर कहीं सब देख रहे हैं। जैसे ड्राइवर बस के भीतर रहता है लेकिन सब बाहर भीतर पीछे का भी देखता रहता है शीशा द्वारा, कौन गाड़ी आ रही है, कौन साइड मांग रही है, आगे क्या है, वो भीतर रह करके ही सब देखता रहता है। ऊपर से चलाता नहीं है गाड़ी को, भीतर से चलाता है। परमात्मा के रूप में भगवान भीतर सब देख रहे, कौन उपाय किया जाए कि परमात्मा को रूठे हुए परमात्मा को मना लिया जाए। भगवान तो रूठे नहीं है लेकिन कुछ कुछ जरूर वो भी ऐसा है कि जब तुम नहीं बोल रहे तो मैं नहीं बोलूंगा। इसीलिए कभी कभी इस प्रकार का रूठना लोक में देखा जाता है और व्यक्ति सोचता है कि मैं पहले नहीं बोलूंगा, पहले वह बोले, ये प्रवृत्ति देखी जाती है मनुष्य में। लगता है जैसे मैं पहले बोल दिया पूछ दिया तो मैं हार गया। तब इसमें कौन पहले बोले भाई, भगवान तो हमेशा गिरे हुए हैं जीव के आगे, और क्या करूं, तो माता हैं पिता हैं, अब क्या करे, खोल करके कह रहे हैं मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरा नाम कीर्तन करो, अब क्या इससे ज्यादा वो क्या कहे। और यहाँ तो कहते हैं मैं तुम्हारा जोग क्षेम वहन करूंगा, मैं सब करूंगा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, तुम मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा दादा भी मैं ही हूँ, पिता हमस जगतो माता धाता पिता मह गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरण सुहित, अब इससे ज्यादा क्या कहें बताइए। ये गिर करके कहना है ना, नहीं तो भगवान इतना बड़े हैं, हम उनको भजन नहीं कर रहे हैं तो भगवान कह सकते हैं ठीक है तुम देखो अपना, हमको क्या मतलब, और भगवान को क्या जरूरत है हमारी बताइए, उनका क्या घटा है। फिर भी भगवान कहते हैं यदि तुम मुझे पत्ता दे दोगे तो मैं ले लूंगा, वैसे भक्ति करो ये करो, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। और जीव इधर दूसरे जीवों को कहता है नहीं ये हमारे हैं, तुम नहीं हो, तुम निराकार, तुमसे हमसे कोई मतलब नहीं है ना। और भगवान कहता है मेरा भजन करो, तो इधर से कहता नहीं मैं दूसरे का करूंगा, तुम जाओ तुम्हारा भजन कुछ वैष्णव लोग भले करे, हमारा इष्ट देव दूसरा। अब भगवान क्या करे, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा पितामह हूँ, गति साक्षी भरतार सब कुछ मैं तुम्हारा। और जीव इधर से कहता है नहीं मैंने इस देवता को सब मान लिया। अब भगवान कितना सहन कर रहे हैं आप जरा समझ लीजिए, बहुत बड़ा तिरस्कार है ना। कोई मान लीजिए पत्नी पति को भूल चुकी है, विमुख हो गई है, पति बार बार कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा भरण करने वाला हूँ, मैं तुम्हारा प्रिय, और वो कहे नहीं तुम नहीं, मेरा कोई दूसरा है, तो कितनी बड़ी ये बुरी स्थिति है। वास्तव भगवान हमारे सब कुछ है, कृष्ण सब कुछ है, और उनको ना समझ करके हम लोग दूसरे की पूजा करते हैं, चाहते हैं ये खुश हो जाए वो खुश हो जाए। खुश हो भी जाएगा तो क्या करेगा वो, जरा विचार तो कीजिए। एक तो खुश होगा नहीं, एक सिद्धांत शास्त्र का है, दूसरा देवता खुश हो ही नहीं सकता है भले आप मर जाइए, पूरा खुश नहीं होगा। और हो भी जाए तो करेगा क्या जीव को, उस स्वयं या भाव में है माया में है, वो क्या करेगा किसी का, कितना देगा क्या करेगा, जन्म मरण से छुड़ा ही नहीं सकता है तो और क्या करेगा। मुचकुंद महाराज को देवता लोग वर देना चाहते थे, वर मांगे, तो मुचकुंद महाराज ने कहा कि क्या आप हमें मुक्ति दे सकते हैं, तो ब्रह्मा जी इंद्र और भगवान शिव आदि कहते हैं नहीं, ये अधिकार तो केवल भगवान के हाथ में है, हम आपको स्वर्ग दे सकते हैं, कुछ भोग दे सकते हैं, कुछ उम्र बढ़ा देंगे, लेकिन हम वैकुंठ नहीं दे सकते। मुचकुंद महाराज कहते हैं हमको ये सब नहीं चाहिए। हमें पूछा कि ये बताया कि भगवान का अवतार पृथ्वी पर कब होने वाला, उन लोगों ने कहा कि द्वापर के अंत में भगवान का अवतार मथुरा में होगा। मुचकुंद महाराज ने कहा कि तब तक के लिए मुझे नींद दे दीजिए, मैं और किसी का मुंह नहीं देखना चाहता, जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं आंख नहीं खोलना चाहता, सोना चाहता। बैकुंठ में जाकर के उनसे मिलने की इच्छा है तो बैकुंठ आप लोग दे ही नहीं सकते, और स्वर्ग तो मैं देख चुका हूं, इसमें तो कोई दम है, तो मैं सोना चाहता, और तब तक की नींद दीजिए जब तक भगवान हमारे सामने प्रकट न हो। और वही हुआ, धौलपुर में गुफा है मुचकुंद गुफा, हम लोग वहां गए, वहां मुचकुंद महाराज सो रहे, और जब जगे तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ और उस राक्षस का हुआ, उनको तो इतना अफसोस हुआ और क्रोध की उसी से वो जल कर रहा था, उसके बाद भगवान का दर्शन हुआ। तो देवता जीव की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते, उनका पावर ही नहीं, कितना देंगे, उनका पोजीशन ही क्या है। हमारे यहाँ गांव में कहावत है मूस मोटा ही लोढ़ा हो, अगर कोई चूहा खूब मोटा हो जाए तो कितना बड़ा होगा, मसाला पीसने वाले लोढ़ा के बराबर तो होगा, और क्या हो जाएगा, हाथी थोड़े हो जाएगा। मूस मोटा ही लोढ़ा हो, मोटा हो जाएगा खाते करते तो लोढ़ा होगा और क्या होगा। देवताओं का पोजीशन ऐसा ही है, क्या वो करेंगे, देव दनुज नर नाग मनुज सब माया विवश बिचारे, लाचार हैं बेचारे, उनकी सहायता के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान का सब कुछ है, वैभव है, ये है वो है, भगवान निकट भी हैं। भगवान का प्रेम जरा देखिए कि जीव को शरीर दिए हैं तो जितने जीव हैं उनके पास उतने रूप से साथ में रह रहे हैं, जीव ही सही व सहज संघाती, सहज प्रेम करते हैं। जीव अगर सुअर के देह में जा रहा है तो वहां भी भगवान जाते हैं, कीड़ा के शरीर में है तो वहां भी भगवान जाते हैं, और इसी आशा से कि अब भी ये हमारे तरफ मुख करेगा, हमारा भजन करेगा। लेकिन वाह रे जीव का अज्ञान, तो मुख फेर ही नहीं रहा भगवान की तरफ, इसलिए गजेंद्र जी कहते हैं अति दूर अमीवा, बहुत दूर जैसा लगते हैं। अनंतम और अनंत है जिनका कभी अंत नहीं होगा, या जिनका धन बल ज्ञान कृपा सौंदर्य सब अपरिसीम है, असीम है, इसलिए वे हैं अनंत। और किसी देवता या मनुष्य की शक्ति वैभव सब कुछ का अंत है, देखा जाता है। और देवताओं का तो छोड़ दीजिए, देवताओं के विषय में तो बहुत जानकारी लोगों को नहीं है, लेकिन मनुष्य का इतिहास लोग पढ़े हैं, अकबर का अंत हो गया, उसके पहले कितने राजा महाराजा हुए, अशोक आदि, उनका अंत हो गया, क्या क्या अंत हो गया, जब देह का अंत हुआ कि स्मृति का तो आदि का तो अंत हुआ है, धन का अंत हुआ, साम्राज्य ध्वस्त हो गया, परिवार मर गया, आज कोई जोहने पर भी नहीं मिलेगा कि अशोक के वंश का कोई है कि नहीं, है ना? कोई है? कोई नहीं रहा, सब मर गए, समाप्त हो गए, अंत हो जाता। जीवन काल में ही कुछ गुणों का अंत हो जाता है, धन आदि का, स्मृति शक्ति आदि का, लेकिन भगवान को अनंत कहा जाता है। एक तो संख्या में उनके गुणों का कोई परिलंकन नहीं, मतलब गिना नहीं जा सकता, और एक एक गुण की सीमा नहीं की जा सकती, अनंत गुण है। ऐसा कहा गया है कि यदि संपूर्ण पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और समुद्र को पूरा सिलाही घोल दिया जाए, पूरा सिलाही और पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, कागज मतलब इस तरह से कोई ऐसी मशीन हो जिसमें सारी पृथ्वी को डाल दिया जाए और एक पतला कागज बन बन करके निकले, तो कितना कागज होगा? इस छोटे से पेड़ को या बांस को पीस करके मशीन में निकालते हैं तो इतना कागज निकल रहा है। सारी पृथ्वी को मान लीजिए किसी मशीन में पीसा जाए और सारा कागज बन जाए, कितना बड़ी राशि है कागज की। और लिखने के लिए जितने वृक्ष हैं नंदन कानन में या इस पृथ्वी पर, सारे वृक्षों की लेखनी बनाई जाए अरबों खरबों, और सिलाही दवात में नहीं समुद्र को ही पूरा सिलाही बना दिया जाए, और लिखने के लिए अपना अपना कंप्यूटर लेकर भगवान शिव बैठे या सरस्वती जी बैठे, भगवान शेषनाग और नारद जी शनकादिक और दुनिया के जितने विद्वान सब लिखे कितना भी तेज गति से, लेकिन भगवान के गुणों में से वे करोड़वा अंश भी नहीं लिख पाएंगे सब मिल करके, फिर भी कम पड़ेगा, सिलाही घट जाएगी, कलम घिस जाएगी, लिखने वाले मर जाएंगे, लेकिन भगवान के गुणों की कोई सीमा नहीं कर पाएगा। ऐसे गुण है भगवान, ये सिर्फ शास्त्र के उद्गार। जो भगवान के अनंत गुणों को गिन करके और शेष कर देना चाहता है, शतुबाल बुद्धि, वह मूर्ख है, बच्चे की बुद्धि है उसकी। परंतु जीव का पुरुषार्थ यह है कि भगवान के गुणों को कहे, गिन करके शेष नहीं कर सकता, लेकिन गिनना, कहना, जप करना, ये जीव का धर्म है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कौन कौन विशेषता को कोई कितना लिखेगा? भगवान के सौंदर्य पर यदि लिखा जाए तो पृथ्वी के सारे कागज उसी में समाप्त हो जाएंगे, पृथ्वी ही कागज के रूप में घट जाएगी, केवल सौंदर्य का वर्णन करने, उनके दया का वर्णन है, धन का वर्णन है, और सब ब्यौरा देना हो कि उनका धन कितना है, केवल रिकॉर्ड बनाया जाए तो सारी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी कागज के रूप में, इतना भगवान का वैभव है धन। छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन आदमी करता है तो ऑफिस बनाता है, उस ऑफिस में कितने कागज भर जाते हैं और कितने क्लर्क बैठते हैं जिनको वेतन देता है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन। फिर भगवान के गुणों का तो कहना ही क्या है, गुणान अनंतवत जमनंत माहु, गुणों की अनंतता के कारण ही भगवान को अनंत कहा गया है। अनंत आद्यम, आद्यम का अर्थ है सबके जन्मदाता, शुरुआत या कारण। इस संसार में हम कोई भी सुमंगलत्व देख रहे हैं या अद्भुत वस्तु देख रहे हैं, किसी में कोई गुण है, विद्वता है, सौंदर्य है, धन है, सबके मूल कारण भगवान, तो वे कितने अद्भुत होंगे। जब इस संसार में हम अद्भुत चीज देखते हैं, सुंदर देखते हैं, विद्वानों को देखते हैं, तो सबके मूल कारण भगवान कितने सुंदर, कितने सुमंगल और कितने अद्भुत होंगे। इस बात को कहने के लिए यह शब्द दिया जा रहा है, आद्यम, सब सर्व कारण, कारण सबके कारण, सौंदर्य के कारण है, धन के कारण है, दया के कारण है, वैराग्य के कारण है, इन समस्त अद्भुत वस्तुओं के कारण है, चंद्रमा के कारण है, सूर्य के कारण है। सूर्य का जो कारण होगा वो कितना तेजस्वी होगा, जो सूर्य जैसे इतना तेजस्वी वस्तु उत्पन्न कर सकता है, वो अपने आप में कितना तेजस्वी होगा। आद्यम और इसलिए परिपूर्णम, भगवान सब तरह से पूर्ण है। ऐसे प्रभु को ईद छवीं मैं नमस्कार करता हूँ, मैं उनको जान नहीं सकता, भगवान को मैं जान नहीं सकता, केवल उनकी स्तुति कर रहा हूँ, गुणगान कर रहा हूँ। यह भाव नवमी ईडे, ईडा का अर्थ होता है वचन, ईरा वचन, ईडा डलय रभेदत ऐसा है, डरयो रभेदत, ड और र में संस्कृत में अंतर नहीं माना जाता है, और ड और ल में भी अंतर नहीं माना जाता, ल और र में अंतर नहीं माना जाता। ईरा शब्द ईरियते प्रेरियते, और ईड्य का अर्थ कहने योग्य, स्तुति करने योग्य, जो स्तुति करने योग्य हैं, ऐसे प्रभु की मैं स्तुति कर रहा हूँ। परिपूर्णम परितः पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण, अब सब प्रकार से कौन कौन प्रकार ये मनुष्यों पर छोड़ना चाहिए कि वो जरा सोचे, प्रकार किस किस चीज से भगवान पूर्ण है, तो इस संसार में मनुष्यों को विचार कीजिए क्या क्या वस्तुएं उनको मिल जाती है तो पूर्ण मानते हैं अपने, जबकि पूर्ण नहीं है, सब चीज अधूरा है। ये पृथ्वी पर इतने मनुष्य है, एक मनुष्य की पृथ्वी नहीं है, छोटा छोटी छोटी पृथ्वी, छोटा छोटा भूखंड है, अपना अपना घर है, और घर है दो चार स्वजन है, कुछ धन है, तो मान लेते हैं हम ठीक है पूर्ण, जबकि कुछ भी नहीं है। और यह संपूर्ण पृथ्वी जिसकी है, और पृथ्वी ही नहीं अप्राकृत अनंत कोटि वैकुंठ जिसका है, वह वास्तव में पूर्ण है। अच्छा, इन वस्तुओं को पा करके वो पूर्ण हुआ ऐसी बात नहीं है, पूर्णस्य पूर्णम आदाय, ओम पूर्णम अदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्ण गच्छते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान अनादिकाल से ही स्वात्म लाभ से पूर्ण, इस जगत में तो कोई जन्म लेता है तो बाद में स्त्री मिलती है, घर मिलता है, धन मिलता है, भोजन मिलता है, पढ़ाई लिखाई करता है, तब जाकर के वो फील करता है, अनुभव करता है कि अब थोड़ा थोड़ा मैं पूर्ण हूं। लेकिन भगवान तो अनादिकाल से आत्मनोरथ, यह जगत उनसे निकला है, इस जगत को पा करके वो पूर्ण नहीं है, बोले वे पूर्ण है। भगवान का वेद में पहला गुण वर्णन है तो उसमें कहा गया है ओम पूर्णम, अगर भगवान पूर्ण सबसे पहले पूर्ण, और हम लोग तो अपूर्ण है, कुछ बाहर से मिलता है तब तो पूर्ण होते। अभी आज एकादशी है लेकिन 12 बजते बजते सब खाली हो जाएगा, पूर्ण कोई नहीं रहे, तो कुछ बाहर से पूर्ण करना पड़ेगा, कुछ हवन होगा तब जाकर के तबीयत ठीक रहेगी, नहीं तो खाने के बाद कहते हैं महापूर्ण, साधु लोग कहते हैं महापूर्ण, तो महा अपूर्ण हुए, दो चार घंटे के बाद फिर अपूर्ण हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। बाहर की जब वस्तु मिलती है तब अपने को थोड़ा पूर्ण मानते हैं, और वो भी छोटी सी वस्तु क्या पूर्ण होंगे, फिर हाय हाय खाओ खाओ लगा रहेगा, दिन में तीन तीन बार चार चार बार खाओ 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 मैंने भरो भरो भरो, खाली हो गए खाली हो गए, यही तो चल रहा है। और खाने पकाने में ही, देह को धोने नहलाने में ही 9-10 बज जाते, पहले तो इस पेट को भरने में टाइम जोड़िए तो 4-5 घंटा रोज आदमी का चला जाता। अगर एक आदमी को कहा जाए कि चूल्हा जलाओ, बर्तन मांजो, खाओ पियो, काम करो, तो दोनों टाइम का जोड़िए तो कम से कम 4 घंटा जरूर लगेगा, बहुत टाइम लगता है इसमें। इसीलिए वृंदावन में जो सच्चे साधु हैं वो मधुकरी मांगकर खा करके राम राम करते रहे, भगवान का भजन, बहुत चटक मटक जिह्वा के विषय को नहीं बनाते, रोटी मिल गई पानी मिल गया खाए पिए बस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जब भगवान मथुरा में कारागृह में प्रकट हुए तो क्या वसुदेव जी और देवकी जी बाजार से वस्त्र खरीद कर दिए उनको, वो अपने आप वस्त्र लिए हुए ही जन्म लिए, और हम लोग तो वस्त्र बाहर से प्राप्त करते हैं, वस्त्र चाहिए, खाने को चाहिए, और सामान चाहिए क्या क्या, और ये सारा सामान कौन बाहर किया है, निकाला है अपने देह से, भगवान सारा, भगवान निकाले हैं उसी को हम जी खा रहे हैं। भगवान सब तरह से परिपूर्ण, परितः पूर्णम, परिपूर्णम, परितः का अर्थ चारों तरफ, सब ओर से, सब विषय में वे परिपूर्ण, धन में परिपूर्ण है, ज्ञान में परिपूर्ण है, और आद्यम है, अनादिकाल से ही भगवान सभी विशेषताओं से पूर्ण। इस संसार में मनुष्य में जब सुंदरता नहीं होती है तो बाहर से सजा करके अपने को सुंदर दिखाना चाहते है ना, बाहर से कुछ सेंट पेंट लगा करके तब वो सोचता है कि मैं थोड़ा सुंदर दिखूं, जो अपनी वास्तविक सुंदरता नहीं, और प्रकृति में तो सुंदरता है ही नहीं, आकृति में तो कुछ होती भी है, प्रकृति का अर्थ स्वभाव, देह सुंदर है ही नहीं, आकृति भले सुंदर हो लेकिन देह में मल मूत्र खून हड्डी सब यही भरा हुआ, भगवान के देह में ये सब बिल्कुल नहीं, केवल चिद घन चिदानंद है भगवान के देह। कौन ऐसी विशेषताएं आप याद करेंगे जो भगवान में पूर्ण न हो? यहां तक भगवान गीता में कहते हैं कि मुझसे बढ़ करके कोई छल करना नहीं जानता, हमसे बढ़कर कोई कपट नहीं कर सकता, द्युतम छलयता मस्म, मैं कपट करने वालों में जुआ हूं। यहां तक भगवान बोलते, भगवान से बढ़ करके कोई मायावी नहीं हो सकता है, और न भगवान से बढ़ करके कोई चोर है। बड़े बड़े आत्मा राम मुनियों के चित्त को केवल अपनी एक नजर से, दृष्टि से चुरा लेते, और वे उनके पीछे दीवाना हो जाते, ऐसे चोर है। अनेक जन्मार जित पाप चौरम, अनेक जन्मों तक रच रच करके जो पापी पाप किए हैं उनको क्षण भर में चुरा लेते हैं, और कोई काम नहीं करते हैं, केवल अपने नाम के उच्चारण से ही बस चुरा लेते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कोई दोष भगवान में नहीं है, एक तो पहले बात ध्यान में रखना चाहिए, सकल दोष विदर्जित, अनंत कल्याण गुण गणांगड़ो भगवान, समस्त दोषों से शून्य और अनंत सद्गुण के समुद्र हैं भगवान, सौंदर्य सागर, कृपा सागर, ऐश्वर्य सागर, सब केवल भगवान के सौंदर्य आदि का वर्णन करने के लिए सरोवर आदि का उपयोग नहीं कर सकते उपमा में, समुद्र ही कहना पड़ता है ना, दया सागर भगवान को कहना पड़ता है। और इधर देवता आदि हैं तो दया बोतल भर कह सकते हैं बस, और ज्यादा नहीं कह सकते, और मनुष्य तो दया सीसी और ज्यादा कम। लेकिन भगवान दया समुद्र, कृपा समुद्र, कृपा निधि, एक तो भगवान के अलावा कोई दयालु है नहीं, और होगा भी तो ऐसा नहीं। हमारे यहां गांव में लोग बहुत सुंदर एक उक्ति करते हैं, कहते हैं राम बिना हित दूसर नहीं, होइबो करिहन तो वैसन नहीं, राम के बिना कोई दूसरा हित ऐसी नहीं है, होगा उस एक को सीकर कहते। तो भगवान की कृपा एक महासमुद्र के समान है, तो समस्त देवता गुरु माता पिता आदि की कंबाइंड कृपा एक सीकर के बराबर भी नहीं, ऐसा प्रियव्रत सतव्रत महाराज का। ये नहीं कहते हैं कि भगवान की कृपा सुधा महासागर के सामने वो सीकर के बराबर है, नहीं, वो अभी नहीं है, ये कहते, ये भगवान की विशेषता। इसलिए भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए। वास्तव इस संसार में बहुत भारी भारी धोखा हो जाता है, आदमी किसी आदमी की शरण लेता है, और खास करके गुरु गुरु कह करके वो समझता है कि बस यही हमारे सब कुछ है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। वास्तव गुरु भगवान को समझाने के लिए, और गुरु की यही बहुत गुरुताई है, वह भगवान को बता दे, जीव को भेज दे कि जाओ भगवान की शरण, यही गुरुता है। लेकिन कभी कभी भ्रम यह होता है कि शिष्य गुरु को ही भगवान का सब विषय में प्रतिनिधि मान लेता। सब विषय में गुरु भगवान का प्रतिनिधि नहीं है। जैसे मान लीजिए एक है बल भगवान में, तो क्या गुरु भगवान के बल का प्रतिनिधित्व करता है? जितना बल है भगवान में वो बल आता है? नहीं, भगवान के सौंदर्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इसी प्रकार से भगवान की कृपा का वो प्रतिनिधित्व तो करता है, लेकिन वो भी बहुत थोड़ा सा। इसलिए श्री कृष्ण कृपा मूर्ति लिखा जाता है। श्री कृष्ण सौंदर्य मूर्ति, श्री कृष्ण बल मूर्ति नहीं लिखा जाता, कृपा मूर्ति। गुरु में भगवान की कृपा कुछ मात्रा में उदित होती है, वह संपूर्ण मात्रा में उदित नहीं हो सकती, संभव नहीं। इसलिए भगवान के वैलक्षण्य को, भगवान की विशेषता को समझना ही चाहिए। तो इस जगह पर परिपूर्णम शब्द आ गया, इसलिए मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। भगवान सब तरह से परिपूर्ण है, समस्त सद्गुणों से, समस्त ऐश्वर्य से, श्री से, ऐसे प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, ऐसे प्रभु की मैं शरण ले रहा हूँ। गजेंद्र जी कहते हैं। तो भगवान की परिपूर्णता को तीन श्लोक में व्यक्त कर रहे हैं, सबका लिंक है। परिपूर्णत्वं त्रिभिः आह, इसमें कहते हैं श्री कृष्ण, पूर्णत्वं प्रदर्शयन् आह त्रिभिः। ऐसे किसी को कह दीजिए कि परिपूर्ण है, तो केवल कहने से क्या होगा, प्रमाण दीजिए किस तरह से परिपूर्ण है भगवान। तो परिपूर्णत्वं प्रदर्शयन् आह त्रिभिः, तीन श्लोकों में भगवान की परिपूर्णता को दिखाते हुए कहते हैं। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नाम रूप विभेदेन फलज्ञः च कलया कृतः। जस्य फलव्या कलया, जिनके स्वल्पया कलया अंशेन, जिनके एक अति अल्प अंश के द्वारा ब्रह्मा प्रधान देवतागण और समस्त वेद तथा समस्त लोक, चर और अचर समस्त जीव उत्पन्न किए गए हैं भिन्न भिन्न नाम से और भिन्न भिन्न रूप से, ऐसे प्रभु की मैं शरण ले रहा हूँ। आगे से इसका अन्वय है। स जयता दीति तृतीय अन्वय, वे प्रभु हमारी रक्षा के लिए आविर्भूत हों, प्रकट हों। इस श्लोक से चालू करके तृतीय श्लोक से इसका अन्वय, स जयता दीति तृतीय अन्वय, ये भगवान की परिपूर्णता। इस विश्व में जो कुछ भी है सबको भगवान ने उत्पन्न किया है, और अपनी एक बहुत अल्प शक्ति से, फल्गु कला से, फल्गु का अर्थ होता है कुछ, से कोई कीमत नहीं, कोई बहुत बड़ा विचार नहीं। इस प्राकृत जगत की रचना जो भगवान ने किया है, तो अपनी एक बहुत हल्की छोटी शक्ति से किया है। कितना विशाल जगत, और सबसे पहले इस जगत में बड़े बड़े लोग हैं, उनमें ब्रह्मा जी सबसे बड़े, देवता सबसे बड़े हैं, और समस्त देवताओं के आदि गुरु या पिता जो कुछ भी कहिए श्री ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा दयः देवा, ब्रह्मा आदि जेषां ते देवा, ब्रह्मा जी जिनके आदि हैं, श्रेष्ठ हैं, जिनमें वे समस्त देवता, मतलब ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य, कुबेर, वरुण और उसके बाद और जितने भी ऋषि मुनि हुए सब और मनुष्य आदि, ये सब भगवान की फल्गु कला से उत्पन्न किए गए, तुच्छ कला से, अल्प कला से। और वेदा, वेद भी, वेद कैसे उत्पन्न किए गए हैं? वेद भगवान के एक बहुत अल्प कला, ज्ञान कला से बनाए गए, यह भी अल्प कहा जाता है। यहाँ वेदा से तात्पर्य है वेदों को धारण करने वाले ऋषि जन। कभी कभी अधिष्ठान के कारण अधिष्ठित का नाम नहीं लेते हैं, अधिष्ठान को ही व्यक्त करते हैं। जैसे कहा जाए कि किसी मैच में भारत जीत गया, तो भारत अधिष्ठान है और भारत का जो खिलाड़ी जीता है वो है अधिष्ठित। तो खिलाड़ी का नाम ना लेकर कहा जाता है भारत जीत गया, ऐसे कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ कहा गया, वेद को धारण करने वाले ऋषि मुनि सब भगवान की फल्गु कला से जन्म लिए। तो वेद के अध्येता या वेद को ग्रहण करने वाले न कह करके वेदा कह दिया गया। अच्छा, वेद ये प्रत्यक्ष अर्थ लेंगे तो इसका अर्थ है कि भगवान की एक अल्प ज्ञान शक्ति के द्वारा समस्त संशयों से शून्य परफेक्ट ज्ञान में वेद प्रकट हुए और लोका चरा चरा चार और अचर समस्त जीव और समस्त लोक भी, लोक का अर्थ प्लैनेट भी होगा, लोक का अर्थ लिविंग एंटिटीज जीव, समस्त लोक स्थान और समस्त जीव। और जीव है दो प्रकार के मुख्य रूप से हैं, चर और अचर, चरा चरा चर और अचर। तो चर कहते हैं जो चलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अगर चर जीव नहीं होता मनुष्य तो एक भी मोटर गाड़ी की कोई जरूरत नहीं, ये चर हैं, घूमते रहते, घुमाकर जीव और एक जगह रहने वाले जीव, इसको चर अचर कहते हैं। तो अचर जीव में जैसे पर्वत वृक्ष पौधे घास ये सब अचर, जहां रहते हैं बस रहते हैं, अगर इनको ले जाना होता है तो दूसरा कोई उखाड़ करके ले जाता है, ये नहीं चल सकता, इनको अचर कहते हैं। और चर में गाय मनुष्य भेड़ बकरी और भी कीट पतंग पक्षी, चर में भी तीन प्रकार के चर हैं, जलचर थलचर नभचर, आकाश में चलने वाले और पानी के भीतर जल के भीतर चलने वाले और फल पृथ्वी स्थल पर चलने वाले, तीन प्रकार के ये सारे जीव और उनके देह और उनके रहने के स्थान भगवान की अत्यल्प शक्ति के द्वारा रचे गए। अच्छा, रचना में भी वैशिष्ट है कि भगवान चर जीवों की भी सृष्टि किए हैं, एक अद्भुत विशेषता, तो अचर भी बना दिए। अच्छा, चर में भी कई किस्म के बनाए, उस कलाकार की कला देखिए, बनाए तो कई प्रकार के जीव बना दिए, कई प्रकार के शरीर, 84 लाख प्रकार का शरीर भगवान ने बनाया। तो शरीर का डिजाइन 84 लाख प्रकार का। एक बार मैं पूछ रहा था एक व्यक्ति से कि अब तक संसार में कितने डिजाइन की गाड़ियां मनुष्य बना पाया है, कितना प्रकार बनाया, जैसे साइकिल है, मोटरसाइकिल है, या बच्चों के खेलने के लिए कुछ डिजाइन, उसके बाद कार जीप और ट्रक बस, लंबा लंबा ट्रक रेलगाड़ी बयान। तो मैं ऐसा पूछ रहा था कितना डिजाइन बनाए होंगे ये लोग। एक व्यक्ति हमको बता रहा था कि कुछ 100 तक बनाए, 1000 नहीं, कहा नहीं 1000 नहीं बनाए, 1000 डिजाइन नहीं बन पाया और भगवान 84 लाख डिजाइन बनाए। वही चाहिए कैसे हो रहा है तो धैर्य से सुनना चाहिए। और वैसे भी आज एकादशी है, 12 बजे से पहले तो कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं, पूरा ने वो दूसरा नियम था, लेकिन एकादशी को नियम है कि 12 बजे से पहले कोई फल नहीं दिया। तो भगवान ने जो आकृतियां बनाई हैं देह की, वो 84 लाख प्रकार का, मनुष्य अभी 1000 में नहीं गया, जबकि सारी सुविधा भगवान ने रख दिया, मिट्टी है, लोहा है, तांबा है, सोना है और हवा है, आग सब, यदि मनुष्य बनाता है तो इन्हीं वस्तुओं के मिश्रण से बनाता है, लेकिन अभी बहुत डिजाइन नहीं करता। तो भगवान 84 लाख प्रकार का बनाए हैं। अब 84 लाख में कितना कितना आकार होगा, कौन कौन, जरा विचार की हरिगो क्या जरूरत है, इसको सुनिए ध्यान से। तो भगवान के आकृति निर्माण कौशल पर विचार करना है और मनुष्य को बनाना होगा तो एक आकार देने, मान लीजिए एक आकार की अगर कार है तो उसका एक एक ऊर्जा एक ही जगह कई हजार बनाएगा, चाहे लाखों बना सकता है। लेकिन भगवान जो बनाए हैं तो ऐसा नहीं है कि एक फैक्ट्री में बना करके और ला ला करके सबको बाहर फिट किया जा रहा है या आंख ला ला करके लगाया जा रहा है। नहीं, एक एक शरीर में स्वतंत्र आकार बन रहा है। पराश शक्ति दुर्धय श्रीयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया। टमाटर का पैकिंग है तो ऐसा नहीं है कि किसी फैक्ट्री में पैकिंग लगा लगा कर यहाँ सील किया जा रहा है। टमाटर का प्रत्येक फल अपने पैकेज के साथ जन्म ले रहा है। यहां तक कि टमाटर उपजाने वाला भी जाकर के कोई प्लास्टिक नहीं लगाता है, कवर नहीं लगाता, भीतर रस भर रहा है और अपने आप पेंटिंग भी हो रही, रंग भी चढ़ रहा है। पक जाने पर टमाटर लाल हो जाता है। वो रंग है, कोई बाहर से नहीं किया गया, स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया चल, स्वाभाविक शक्तियां भगवान की, स्वाभाविक टेस्ट, स्वाभाविक आकार, रंग, वजन, सब कुछ। और बाहर कोई फैक्ट्री की जरूरत नहीं, जमीन में उगा हुआ पौधा ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर फल बना देता है। मनुष्य की क्या कुशलता है, खाना जानता है, बस इतना ही कर सकता है। दाता भगवान है और भोक्ता, भोक्ता मत कहिए, भूखड़ कहिए, दरिद्र आदमी खाना जानता और खा रहा है किसी किसी का बना करके, तो उसी पर लोग सराहना करते, आहा कितना टमाटर सूप बनाया है, ये जूस बनाया है, वो जूस बनाया है, किसका सब दिया हुआ है। अगर कोई मौसमी का जूस पीता है तो मौसमी का जूस तो भगवान दिए ना, उसको केवल पैर पैर करके और निकाल दिए। तो भगवान का गुण गाना चाहिए कि नहीं, केला भगवान बनाए हैं, कहाँ का केला आया करके इधर बिक रहा है, कहाँ का सेब इधर बिक रहा है और कहाँ का चीकू इधर बिक रहा है, सब भगवान जगह जगह बनाए हैं। उसको मनुष्य क्या करता है, बस तोड़ो, इधर भेजो, ट्रांसपोर्ट करो, बेचो, खाओ, बस। और ये इसी में समझता है मनुष्य बहुत अच्छा, मनुष्य जैसा अपूर्ण दरिद्र कोई नहीं है। तो खाओ, टमाटर तो खाता है, टमाटर खाओ, भिंडी खाओ, केला खाओ, बैगन खाओ, चावल खाओ, गेहूं खाओ, सब खाओ। और यहां तक कि पशु भी खाया करो, पशु भी मार काट करके खाना चालू करो। तो वो तो आदमी है ही नहीं जो पशु खाते हैं, वो तो उनको शास्त्र में म्लेच्छ कहा गया जो मांस खाते हैं। और उसमें भी जो गाय खाते हैं वो तो राक्षस है, वो तो आदमी है ही नहीं। जब आदमी का वर्गीकरण किया गया है शास्त्रों में तो सबसे अधम आदमी का विवरण दिया गया है कि स्वपच, कुत्ता खाने वाला। और इसके बाद आदमी का वर्गीकरण ही बंद हो गया, उसके बाद राक्षस का खाता चालू हो गया, दूसरे पशु को खाने वाला। ये शास्त्र का वर्गीकरण मैं बता रहा हूं। तो मनुष्य की ये दशा है, कितना अपूर्ण है, और इतना अपूर्ण है कि केवल भोजन चल जाए तो इसी को भारी पुरुषार्थ मान रहा है। ये खा लें, ये पी लें, ये करें, वो करें, सब कुछ भगवान दे रहे। तो मैं इस पर विचार कर रहा था, आकार भगवान बनाए हैं विविध, आकार के साथ साथ स्वाद भिन्न भिन्न प्रकार का। केला का स्वाद दूसरा है, पपीता का स्वाद दूसरा है, नींबू का स्वाद दूसरा है, कोई कषाय है, कोई अम्ल है, कोई मधुर है, कोई क्षार है, कोई लवण है, कोई कुछ है, इस तरह से विविध स्वाद में सारी वस्तुएं बटे हुए। और भगवान की जरा व्यवस्था देखिए, कितने स्वाभाविक ढंग से सब कुछ हो रहा है, सबको पोषने के लिए भगवान बनाए। एक एक चीज पर विचार करने पर तब भगवान की महिमा को मन स्वीकार कर लेता है, वास्तव में भगवान कर रहे हैं, मनुष्य कुछ नहीं कर रहा। और यह सारी व्यवस्था भगवान की एक फल्गु कला से हुआ है, एक स्वल्प अंश के द्वारा हुआ है। भगवान गीता में अपनी विभूतियों को गिना रहे हैं तो गिनाते गिनाते अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं, कैसे श्लोक है, विष्टध्यान इदम प्रश्नम जगत स्थित अथवा बहुनय तेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन, भगवान सारा गिन करके कहते हैं कि अर्जुन ये सब तुम जान कर क्या करोगे, जान भी नहीं पाओगे। इतना ही समझो कि कृतस्मम जगत, ये सारा विश्व हमारे एक अति तुच्छ अंश में टिका हुआ है, बस इतना ही समझ लो काफी। भगवान ये कहने का मतलब है कि ये सारा विश्व हमारे एक रोम कूप में अटका हुआ है, ज्यादा क्या तुमको मैं सुनाऊं। अथवा बहुनायते न किम ज्ञाते न तर्जन, बहुत जान कर क्या करोगे, इतना ही जान लो। ये भगवान का वैभव। बहुत प्रकार के चार प्राणी बनाए, अचर बनाए और खाने के लिए वस्तु बनाए, पहनने के लिए वस्तु बनाए, रहने के लिए वस्तु बनाए, सब व्यवहार करने के, और भिन्न भिन्न लोक बनाए। एक ही पृथ्वी भगवान नहीं बनाए हैं, पृथ्वी पर भी कई द्वीप बनाए हैं, कहीं ऑस्ट्रेलिया उधर पड़ा है, अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, और एक एक स्थान कितना बड़ा बड़ा है। पृथ्वी के अलावा और भी बड़े बड़े लोक हैं, वहां पर भगवान ने अद्भुत वृक्ष बनाया है, अद्भुत भूमि बनाया है, अद्भुत वहां के जीव हैं, जिनके जीवन की अवधि बहुत लंबी है, जिनका ज्ञान बहुत लंबा है, जो बहुत सुंदर है। और इसके साथ ही साथ भगवान ने असुरों को भी बनाया है नीचे के सात लोकों में। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में सब वर्णन है, ये सब भगवान के की सृष्टि। परंतु कितना भी विशाल यह जगत हो, कुछ भी हो, पर भगवान के लिए कहा जाता है कि उनकी फल्गु कला से यह सब बना हुआ है। सबका रूप अलग, नाम अलग, नाम भी भिन्न भिन्न प्रकार का। कभी कभी हम लोग छोटी छोटी बातों से ही चकित हो जाते हैं। जैसे कभी कभी विचार करते हैं, मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति के पास 400-500 भेड़ है, बकरी है, तो हम सोचते हैं सबको कैसे पहचान लेता है। ऐसे कभी कभी विचार करते हैं ना। लेकिन आप अगर बकरियों पर विचार कीजिए, चाहे आदमी पर विचार कीजिए, तो इतने अरब आदमी हैं, लेकिन दो आदमी के चेहरे में कुछ न कुछ भेद जरूर, नाम रूप विभेद, रूप विभेद। ये भगवान की कुशलता भी। 84 लाख प्रकार का तो वो सांचा गढ़े हैं डिजाइन, और फिर एक एक में तो कोई संख्या ही नहीं है, और कोई दो व्यक्ति एक समान नहीं, न एक समान उसकी बुद्धि है, न एक समान आकृति है, कुछ न कुछ जरूर भेद है ना। इस बात को तो मानना पड़ेगा ना, कुछ न कुछ वैचित्र है, रूप वैचित्र, रूप नाम रूप विभेद है ना। तो हम लोग तो ईंट बनाते हैं तो एक डिजाइन का ईंट गढ़, एक तरह की मशीन, एक तरह का पार्ट पुर्जा सब, लेकिन भगवान मनुष्य मांग जो गढ़ते हैं तो सभी मनुष्यों की आंख में कुछ कुछ भेद है, कान में भेद है, कंठ स्वर में भेद है, रंग में, आकृति में, स्वभाव में कुछ न कुछ भेद। तो इसका अर्थ यह है कि 6 अरब कितने मनुष्य हैं, 6 अरब और जितना है कितने कितने हैं ये मैं कह रहा हूँ, 6 अरब। तो 6 अरब रूप तो बना दिए और नाम भी बनाए होंगे, तो नाम तो कुछ लोगों का हो सकता है कि टैली करता हूँ, है ना, यहीं पर दो वसुदेव नाम तो हो सकता है कि टैली कर जाए, बहुत हजारों नाम टैली कर सकता है, लेकिन रूप तो निश्चित 6 अरब होकर के ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये भगवान की विशाल कृति देखी, जबकि ये फल्गु कला से थोड़ा चाहते। अच्छा, 6 अरब मनुष्यों को सांस लेने के लिए हवा दी है, और 6 अरब पानी पीते होंगे तो कम से कम 5 लीटर रोज पीते होंगे, केवल पीने के लिए वर्णन कर रहा हूं, तो 5 लीटर पानी पीते होंगे तो 30 अरब लीटर पानी रोज चाहिए उनको, तो नहाने के लिए अलग, भोजन बनाने के लिए अलग, कपड़ा धोने के लिए अलग, फैक्ट्री चलाने के लिए भीम जल चाहिए, सिंचाई करने के लिए अलग पानी चाहिए, है ना। और फिर भी पानी का स्टॉक जो का त्यों पड़ा हुआ, इसको महाभूत कहते हैं। 5 महास्टॉक भगवान ने बनाया है, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। कितना भी खर्च कीजिए बना हुआ है, जो पृथ्वी में कितना घर बनाते हैं, कितना उत्पन्न करते हैं, बेचते हैं, लेकिन पृथ्वी जो की तेव बनी हुई, जल बना हुआ, अग्नि पूरा, वायु वैसाणी, एक एक खर्च जरा जोड़ी है एक एक मनुष्य पर, और मनुष्य के अलावा कितने जीव हैं उनकी कोई संख्या नहीं, उनकी आवश्यकता है, चाहे तो पानी की आवश्यकता है, इन 6 अरब मनुष्यों को दवा की जरूरत होती होगी, कुछ हो सकता है दवा की आवश्यकता में नहीं होंगे, लेकिन ज्यादातर तो अब तो जन्म लेते ही पोलियो की टीका लीजिए, सुई लीजिए, तो वहां से ही दवाई चालू हो जाती, तो जिंदगी भर सारे मनुष्यों की दवा जोड़िए कितना दवा होता होगा, और फिर भोजन, और कई मनुष्य हैं जो 4-5 बार भी खाते हैं, 10 बार भी खाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा तो कुछ नाश्ता किए, चाय पिए, बीड़ी पिए, गांजा पिए, चाहे सिगरेट पिए, चाहे शराब पिए, तो शराब की सप्लाई कई अरब लीटर में होती होगी, अरब लीटर तो करोड़ लीटर में होती होगी, और सब भगवान के द्वारा दिया हुआ है, ऐसे भगवान का ओरिजिनल दिया हुआ लोग सड़ा करके पीते हैं शराब का अर्थ होता है सड़ा हुआ याद पानी, सड़ा हुआ पानी पीते, अखंडानंद सरस्वती महाराज अर्थ करते थे सड़ा हुआ पानी, तो शराब चाहिए, भोजन चाहिए, और भोजन एक व्यक्ति कितना करता होगा दिन भर में, अगर उसका चावल दाल या रोटी जोड़ा जाए, रोटी खास करके थोड़ी आटा और भी मसाला आदि, तो एक दिन में भगवान को कई करोड़ टन सप्लाई करना पड़ता होगा एक दिन, और प्रतिदिन सप्लाई करना है, और उसमें भी लोग एकादशी तो रह नहीं रहे हैं, और एकादशी भी रह रहे हैं तो वो भी फल खा रहे हैं, तो ये सप्लाई तो जो कि तय करनी पड़ती होगी, अच्छा वो प्रतिदिन करनी है, और जीवन भर और ये मर करके सिर चला जाएगा तो दूसरे के लिए भी करना ही, तो कर ही रहे हैं अनादिकाल से, गतिर भरता इतनी माल की सप्लाई भगवान कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, स्टॉक भगवान का घटने वाला नहीं, भगवान दे रहे हैं वास्तव में। एक भक्त कह रहे थे कि राजस्थान में 3-4 साल से अकाल पड़ रहा है, लेकिन फिर भी भगवान खाने को दे ही रहे हैं, कोई न कोई व्यवस्था कर रहे हैं, पर अच्छा खाने को दे रहे हैं ये भगवान की व्यवस्था है वास्तव में, मनुष्य की नहीं है, क्योंकि मनुष्य फैक्ट्री में चावल पैदा नहीं कर सकता, चना नहीं पैदा कर सकता, केवल नट बोल्ट पैदा कर सकता है, मनुष्य वही चीज पैदा कर सकता है जो मनुष्य के खाने लायक नहीं हो, ये निश्चित, खाने लायक चीज नहीं पैदा कर सकता, खाने योग्य सारी वस्तुएं भूमि से उत्पन्न होती है, आप देख लीजिए कोई भी चीज, और मनुष्य क्या फालतू चीजें पैदा कर सकता है जिसका जीवन में कोई बहुत उपयोग नहीं, एक उपयोग है कपड़े का, तो कपड़ा मनुष्य का बनाया हुआ नहीं, भगवान ने मूल इंग्रेडिएंट्स दिया है उसी को ये बना लेता है, जो कपड़ा भी भगवान का दिया हुआ है, मकान भी भगवान का दिया हुआ है, लोहा पत्थर ईंट ये सब मिट्टी से बनता है, मिट्टी से ईंट बनाते हैं, तो उसमें भी आग भगवान का लगता है, पानी भगवान का, कोयला भगवान का, सब भगवान का, मनुष्य क्या करता है इसको सजा देता है, सजाता तो मनुष्य भी तो भगवान का बनाया हुआ है, उसकी बुद्धि उसका हाथ पैर सब भगवान का बनाया हुआ, तो इस तरह से भगवान चर अचर देवता वेद सब बनाए, वेद इसलिए बनाए कि मनुष्य इसके अनुसार जिए पुरुषार्थ करे, गाइड करने के लिए भगवान ने वेद दिया, सृष्टि करके स्वतंत्र नहीं छोड़ दिया कि जिसके मन में जो है वो करो, ऊपर से गाइडेंस दिया ऐसे जियो ऐसे करो ये करो, वेद बनाए, और इसमें नाम रूप विभेदन यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि सबको भगवान ने नाम दिया, अब लाखों प्रकार का वृक्ष बनाया तो सबका अलग अलग नाम दिया, ये भगवान का नाम दिया हुआ है, जैसे इसको अशोक कहेंगे, इसको उडुम्बर कहेंगे, इसको मालती लता कहेंगे, ये आलू है, ये टमाटर है, ये गोभी है, ये अमरूद है, यह सेब है, सब भगवान का ओरिजिनल नाम दिया हुआ है सब वस्तुओं का, ऐसा नहीं कि भगवान बना दिए चीज और उसका नाम ही नहीं दिए, ऐसा नहीं, भले लोगों को पता नहीं है भगवान ने सारा नाम संस्कृत में दिया है, और दूसरे भाषा में भगवान नाम नहीं दिए। संस्कृत में सब नाम है, पर आज लोगों को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होने से वो कुछ है दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं, पर वो अभी भगवान का ही दिया हुआ होगा, जैसे भी दिए होंगे। सेव को सेव न कहकर ये पल ये पल ये पुल कहते नाम तो है, लेकिन ये ए बी सी डी ये भी भगवान का दिया हुआ है। शब्द पहले भगवान से ही निकला, तो सभी वृक्षों का नाम, पशुओं का नाम और मनुष्यों के जो इंडिविजुअल नाम पड़े हैं, यह भी सब भगवान का दिया हुआ है। आवास कुछ नाम मनुष्यों का दिया हुआ है, टिंकू टिंकू ये सब आदमी का दिया हुआ नाम, लेकिन और जो है जैसे श्याम नारायण सुरेंद्र महेंद्र ये सब भगवान का दिया हुआ है। ये बहुत अच्छे अच्छे संस्कृत के नाम। तो इतनी वस्तुओं लोगों का नाम देना, देवताओं का नाम अलग अलग देना, वृक्षों का नाम, पशुओं का नाम और छोटी से छोटी चीज का भगवान ने नाम दिया, कितना बड़ा भगवान का ज्ञान है, उनकी व्यवस्था है, सब विविधता अलग अलग सारा हिसाब किताब रखना। एक मनुष्य क्या क्या कर्म किया है उसका फल बिल्कुल अलग, उसका अकाउंट अलग, उसके कर्मों का हिसाब। एक कीड़ा क्या पूर्व जन्म में था, आगे क्या होगा, इस समय क्या कर रहा है, उसका अकाउंट अलग, सबका विवरण भगवान के पास अलग अलग, सबका रूप डिजाइन ज्ञान स्मृति भोग शयन जागरण सब कुछ भगवान करते। तो जस्य फलगया कलया कृता किए गए हैं, वे प्रभु हमारी रक्षा के लिए हमारे पास आविर्भूत हो। जय तत्कार्थ है, जय हो मतलब हमारे पास आए, ये अर्थ श्री पशुधर स्वामी ये अर्थ करते। किस तरह भगवान ने इस जगत की सृष्टि की है वो दृष्टांतों से उसको समझाया जा रहा है। यथार्च सग्न सदतुर्गभस्तयो निर्यांत संयांत सकृत सरोचिषः तथा जतोयं गुणसं प्रवाहः बुद्धिर्मनः खानु शरीर सर्गः यथार्थ स्वग्न सवितुर्गभस्तयो निर्यान्त संयान्त सकृत सरोचिषः।